दिल को एक बुझबू दो, सागर को के जल को एक बुझबू दो। और मैं बुझबुझे की परीक्षा या प्रश्न वो महापुरुषों के हृदय के माया है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो परिमित है ना, शुद्ध है, अतः है, शुद्ध है और तीक्ष्ण है। ऐसी जो शुद्ध तीक्ष्ण बुद्धि जो है, उस बुद्धि के बीच के माँ उस दया सागर के एक दया को जो एक बुद्ध जो है मेरे को प्रतिनिधि मानना की उसमें वह दया है। दया तो है भगवान में, वह दया का सागर है। अगर दया को एक बूंद को जो या एक अपने बुद्ध को एक प्रतिनिधि मैं बना सकता हूँ, जो वो सबके ऊपर समान भाव से दया करे है, मुमकिन युक्ति से सब ख्याल करके देखो, मन को जो शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां है, अपने लोगों से विलक्षण है, किंतु है तो तुम से ईश्वर की जो शक्ति प्रकृति बैंक को कार्य है। तो बुद्धि तो जड़ी है, तो जड़ में बना चेतन एक चीज कैसे सुनाओगी? चेतन को जो प्रतिबिंब आकर के प्राप्त हो है, वो एक प्रकार से बुद्धि जड़ है, वो प्रतिबिंब भी जड़ है। दो महापुरुषों की जो दया है, मैं को अपना लाभ उठावा तो एक मनुष्य को नहीं सारे संसार को कल्याण हो सके। इसी प्रकार से थी और जो गुण है, क्षमा, शांति, ये सब जो एक प्रकार से जड़ है, उसे अंतःकरण में जो है जो क्षमा है, वो एक प्रकृति से मिली हुई माने बुद्धि मिश्रित, बुद्धि प्रकृति को कार्य बुद्धि बल से मिली हुई, बुद्धि विशेष प्रकृति विशेष ही वे सारे गुण है। सात्विक गुण है प्रकृति में, सत्तर स्वयं तीन गुणों के मां सात्विक गुण है जिसका सब सात्विक है। उनके बीच में जो गुण है, क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, श्रद्धा है, प्रेम है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति, जितना जो एक प्रकार से अपने गुण है, तो सभी उस महापुरुषों के हृदय के वहाँ है। भगवान की जो अनंत गुण है, उन गुणा के एक अंश को प्रतिबिंब रूप से उस महात्मा के अंतःकरण के वहाँ है। और दो गुणा से थी हजार आदमी, लाख आदमी, करोड़ आदमी, सब के सभी क्या हो तो उद्धार हो सके। जो उद्धार होना चाहो उनको उद्धार हो सके, बाकी तरफ से तो न उसकी कोई मनाही है और न उसके कोई अपने समझ की आग है, न तो निषेध है और न बड़े विधि है। माने कोई लाभ उठा रहे तो मनाही को नहीं, और न उठा रहे तो आग्रह, बड़े आग्रह भी को नहीं और मनाही, फिर भी परिस्थिति ऐसी होगी कि मानो आग्रह है। लोगों को क्यों उद्धार इसके लिए तत्परता है, प्रतीति व्यवहार ऐसी होगी वास्तु के बीच के वहाँ दोनों समान। मैं वहाँ कर्मों के विषय में भी उनके वास्ते कोई अपने विधि निषेध नहीं है, पर ऐसा होने पर भी उनकी क्रिया विधि वैसी होगी, निषेध की नहीं, ऐसा होते हुए भी जैसे भगवान के लिए कोई विधि निषेध नहीं, उनके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं, जैसे भगवान के लिए कर्तव्य कर्तव्य नहीं, ऐसे उसके लिए कोई कर्तव्य कर्तव्य नहीं, जैसे भगवान के लिए प्राप्त अप्राप्त नहीं, ऐसे उसके लिए कोई प्राप्त हो अप्राप्त नहीं, कि या तो उन्हें प्राप्त होने की आवश्यकता या नहीं है, कुछ भी एक प्रकार से उनके लिए सब काम तमाम हो, उनको जो शरीर है, अंतःकरण है, मन बुद्धि है, संसार के इसके भी है और उसके शरीर के जो संस्कार है उसके उपभोग के लिए, का जो भोग बाकी है शरीर का, बिना भोगता के भोग है वहां सब मनुष्यों के मन जो है वो तो भोगता नहीं, लेकर के सुख दुखे लाभ हानि सब हो गए, और वहां कोई भोगता नहीं है। वो शरीर में जो संस्कार है स्वाभाविक ही एक प्रकार से थी, अपने शरीर में भोग हुए है, भोगता भी नहीं। जब बुखार हुए तो वह संस्कार से ही हुए, मीते तो संस्कार से मीते है, कोई भी एक प्रकार से चीज हो। और ये बात आपको बताई जाती है अंतःकरण के बीच के वहां दो प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार से सबके और महात्मा का एक प्रकार। अंतःकरण की बीमारी क्या कि जैसे अंतःकरण के भीतर के मां ये मानसिक रोग है, मानसिक रोग क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष मत्सरता अभिमान घमंड अनेक प्रकार के अर्थ हैं। ये अंतःकरण के दोष है, रोग है, ये महात्मा में नहीं होते और अज्ञानी के मां होते। दूसरा जो है कि जैसे उनके मन बुद्धि है, उस मन बुद्धि के मां ये बीमारी हो सका है, एस्टीरिया की बीमारी है और मृगी है या अपने पागलपन है, ये मन बुद्धि में ये बीमारी हो सके, ये प्राधिक संग्रह है। और वे जो बताया मैं आपको वे धर्मी होने को है, पहली जो बात बताई क्रामक रोग दो मद मच्छरता राज जोश आदि जितने जो जोश है वे जड़ में नहीं होते, वे जड़ और चेतन दोनों की एकता वह वहां होती है, उस अंतःकरण में होती है। और ये जो है जड़ में होती है, जड़ की तो उसकी है, तो जड़ में होने वाली मन बुद्धि की बीमारी तो उसके वह है, और चेतन जो साथ में लेकर होने वाली जो बीमारियां बनी विस्मृति है ये हो सके, अज्ञान नहीं हो सके, निद्रा और आस आ सके, क्योंकि जिसको एक प्रकार से परमात्मा विषय को जो अनुभव है वो जो एक उसको बोल नहीं जा सके, परमात्मा विषय को जो अनुभव है वो उसे अंतःकरण में तो उसको प्रतिदिन मात्र और असल तो स्वयं वो परमात्मा में प्राप्त हो चुके वहीं की आत्मा होना है, तो वहां तो जा ही क्या। और इस अंतःकरण के मां जो अपने विकार विकार बताया आपने ये उस पर नहीं हो सकते, तो उनके जो अपने गुण बताया एक तो है गुणों को समूह एक दोषों को समूह गुण हो सके, क्योंकि परमात्मा जो है गुणों के सागर, परमात्मा के स्वरूप का परमात्मा के गुण का परमात्मा के प्रभाव का असर पड़ता है, तो ये जो एक प्रकार से कभी देखने में तो अच्छे पुरुषों के देखने में पुष्ट होने के मैं भी अगर भी क्रोध की बात किया जा रहा है, काम की बात किया जा रहा है, प्रेम की बात किया जा रहा है, ये सब बातें तो उनके द्वारा आया है शास्त्र में दीवार में, तो वो एक प्रकार से थी स्वयं की माफक है, वो भी एक प्रकार से विशेष उनके हित के लिए जिसके संबंध जुड़े क्रोध आदत तो भी उसके हित के लिए से जितनी भी घटना घटित उसकी हिस्ट्री भी है तो वो है नहीं बात होती जिसमें वो बिल्कुल आप ये समझो कि एक शांति जो है उनकी आकृति मात्र है बस उसमें कोई चीज नहीं है आकृति मात्र उनसे काम हो जा रहे और भी एक प्रकार से उसके मन बुद्धि से सभी काम है अपना लोगों की मन बुद्धि से उनकी मन बुद्धि बहुत विलक्षण है वो विलक्षण का परमात्मा के विषय में परमात्मा के गुण पर राजत रह के समझने के विषय में है संसार के पचास के समझने के विषय नहीं संसार की जो कला कौशल है जिसे संसार को साइंस है दो विषय के नहीं मैंने दो विषय में लगा रही थी लगा हो तो दो विषय में भी हो सके बुद्धि की कुशलता तीक्षणता तो है ही तो मैं भी सुन लेकिन प्रवृत्ति होने के कारण ही कौन रुचि है तो प्रवृत्ति की रुचि है ही ये तो मामूली बात है योग जो है योग विद्या जिसे हनुमान जी सिद्धिया प्राप्त है उस विषय में भी उनकी रुचि नहीं तीव्र वहीदा स्वाभाविक सब व्यवस्था में ही थे सिद्ध व्यवस्था एक बिल्कुल भाषिक है तो उसको संबंध ही नहीं है साधन अवस्था में भी सिद्धियां है लेकिन जिग न साध नहीं है जो जिग न तो साधु कुछ भी उसकी जगह क्यों जाएगा ये कला कौशल से कोई संबंध नहीं है जो प्रकृति का जो कार्य है प्रकृति के अंदर जितनी कला कौशल है उससे उनको कोई संबंध नहीं उनके साथ में एक प्रकार से संबंध जुड़े कोई जोड़े तो जुड़ते पड़ोसों को संबंधी कौन जोड़े के जुड़े उनका प्रभाव भी अपरिमित है और उनके गुण भी अपरिमित है परमात्मा के भगवान के उनसे भी बढ़कर वो जो महात्मा को जो शरीर है वो व्यक्ति है सब को जो अंतकरण है तुलना दी जा रहे तो बिल्कुल ईश्वर जो है परमात्मा जो संसार में आकर अवतार लिए है भर के मुकाबले वो कुछ भी कि परमात्मा जो अवतार जो है तो उनको शरीर है जिनको भी जीव अलौकिक है और शुद्ध है बिल्कुल शरीर शुद्ध है तो है तो पांच भौतिक अशुभ उठो फिर आप न सुने से वह अपेक्षा के शुभ मानेंगे परमात्मा जो अवतार लिए उसके समान थोड़ी परमात्मा यानी भगवान जो अवतार जो है तो उनमें तो जितने लक्षण है गुण है वह सब चेतन है परमात्मा पुरुष के जो शरीर है उसके जो लक्षण और गुण है वो चेतन नहीं है उस परमात्मा के गुणों को प्रतिबिंब मात्र है इस बात से भगवान के जो गुणों की तो बात अत्यंत विलक्षण है तो चेतन है और जड़ है ये फर्क ही नहीं वह अपरिमित है और उस अंतरण में वह अपरिमित नहीं है अपरिमित सा है माने वास्तु के विषय में अपरिमित जो है परमात्मा ने जैसे किसी एक अंश को अपने प्रतिबिंब है तो बिंब और प्रतिबिंब में राजबिंब का फर्क है दूसरा एक प्रकार से सीमा के बीच के मां वो एक बल्कि कोई सीमा है ही नहीं तो अपने स्वयं भगवान के स्वरूप की सीमा नहीं उनके प्रभाव की सीमा नहीं उनके गुणों की सीमा नहीं जिसकी सीमा नहीं है उसे सब कुछ उसे सीमा है अंतकरण की सीमा उसके एक अंश का प्रतिबिंब सबका प्रतिबिंब तो आई नहीं सके एक अंश का प्रतिबिंब जैसे आपको बताया सारे आकाश का प्रतिबिंब एक आने की मां नहीं आ सके तो उसका जो अंतःकरण है, अनेक जो है सारे जो गुण प्रभाव स्वरूप है वो सब एक प्रकार से आकाश की माफिक है, बल्कि आकाश से भी बहुत ज्यादा आकाश की भी सीमा है, उनकी सीमा नहीं। आकाश एक जड़ है, सीमा वाला है, अपनी दृष्टि में असीम है। ऐसा होते भी वास्तव के बीच में एक प्रकार से अपेक्षा के विचार किया जाता है तो सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है उस परमात्मा के तो मन के एक अंश में आकाश, और वो मन है उस परमात्मा की बुद्धि के किसी एक अंश में समस्त बुद्धि के जिसका नाम महत्व है, और वो महत्व जो है वो उस परमात्मा की जो शक्ति है प्रकृति में जो किसी एक अंश में है, जिस प्रकृति के बीच में अनेक ब्रह्मांड एक प्रकार से उत्पन्न और विनाश हो, ये ईश्वर की शक्ति, और वह शक्ति जो उस परमात्मा के किसी एक अंश में है, आगे जाकर के बस ये नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा भी किसी के एक अंश है, तब उसकी वहां फिर सेवा न परमात्मा की खुद की सेवा है, न उसके गुणों की सीमा है, न उनके प्रभाव की सीमा, किसी की भी वहां सीमा नहीं, और वो सभी की चेतन है, और वो नित्य है, और वास्तविक वहां निर्जी जो शब्द है ये कालवाचक है, और परमात्मा वास्तव के बीच में देश और काल से रहित। आकाश जो है वो देश को ही अपने देश के भाव को दर्शाए है, और परमात्मा देश से रहित है। आकाश को अपना दृष्टान देना कि अनंत है, माने बिल्कुल सीमा नहीं है, यह बात अपने लोगों की दृष्टि में ठीक है, किंतु वास्तव के बीच के मन जो है जितने जड़ पदार्थ है उसे भी सीमित है। तो चेतन जो परमात्मा है की जो असीमता है वो वाणी के द्वारा बतलाई नहीं जा सके, बुद्धि के द्वारा समझी नहीं जा सके, वो तो परमात्मा ने जो प्राप्त हुआ जितने भी नहीं समझ सके जान सके। तो महात्मा ऐसी बात की अंतर्गति ही या परमात्मा के प्रभाव की स्वरूप की तत्व की बात है समझाने के लिए कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो तत्व है, रहस है, प्रभाव है, गुण है, वो इससे भी और बहुत विलक्षण अनंत है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महापुरुषों के विषय की बात इसमें कही हुई है, इसी विषय की बात फिर कही जाती है। वास्तव के वहां जो महापुरुष है भगवत प्राप्त पुरुष बहुत ही कम है, लाखों करोड़ों के वहां कोई एक है, पर तुम तो उनका मिलना ही बहुत मुश्किल है, मिलना उसे दुर्लभ है, और मिल जाए तो उसमें पिछाड़ना दुर्लभ है। यदि मिल जावे तो उन पुरुषों के संग की तो बात ही क्या है, उनकी समृद्धि जो है या सत्संग में जाने की समृद्धि है, उन पुरुषों की जो समृद्धि है उससे प्रत्यक्ष लाभ है, दृष्टियां बदल जाती है, भाव बदल जाता है, सत्य में ज्ञान को विचार करने से लाभ शुरू हो जाए, रस्त चालने में भी लाभ, और पहुंच करके सत्य देखने में भी लाभ, और सुनने में भी लाभ और मनन करने में लाभ, उनके चिंतन करने में वहां लाभ, और धार्मिक करने की तो फिर बात ही क्या है। उसके अनुसार बुद्धि के माँ उसको धारण करे और उसके अनुसार चले तो फिर बड़ा पारी है। हर एक प्रकार से सत्संग को लाभ उठाना चाहिए, ईश्वरी भक्ति विषय को लाभ उठाना चाहिए। जो भक्ति को प्रधान अंग है सत्संग है, जैसे भगवान का नाम को जप, जैसे भगवान के स्वरूप को ध्यान, बहुत उस गति को साधन है। ऐसे सत्संग खुद ही साधन है और उसके अनुसार अनुष्ठान करना, उसके अनुसार चलना, मैंने काम में लेनी तो बहुत ही उत्तम जरूरी की बात है। भजन ध्यान करने को जो अभ्यास है, ये सत्संग की सुनी बातों को काम में लेना है। ऐसे ही एक प्रकार से निष्काम भाव से लोगों की जो सेवा करनी है वो भी सत्संग की बात में काम में लानी है। सत्पुरुष जो थे उनकी मोटी पहचान, साधारण पहचान मैं आपको बताऊं। सत्पुरुषों के बीच के वहां अलौकिक समता रहती है, सत्पुरुषों का भाव सम होता है। बिहार के बीच के वहां बाबी समता है, जिकी समता है, उनको जो व्यवहार है युक्ति संगत न्याय संगत है, बाई समता है। उनके साथ के ना व्यवहार अलग अलग हो, जैसे पिता के साथ में पिता के जैसो, पुत्र के साथ में पुत्र के जैसो, माँ के साथ में माँ के जैसो, स्त्री के साथ में स्त्री के जैसो, तो व्यवहार सबके साथ में भिन्न भिन्न है। उनको जो भीतर को भाव है वो समय सबके साथ, उनके व्यवहार में खास बात क्या समझनी चाहिए। एक तो उनके मन स्वार्थ नहीं होता, एक वे इस लोक और मरने के बाद परलोक में अपनी पूजा नहीं चाहते, अपना स्मारक बनाना नहीं चाहते, जीवन तक उसके शरीर को पूजो या उसकी फोटो को पूजो, मरने के बाद उसको फोटो को पूजता रहो, उसका मंदिर बना करके लोग पूजता रहो, ये वो अपने कर्म ही समझते। ये सब बात जो है घृणा सब देखते हैं, बुरी बात समझते हैं, जबकि उनकी घृणा नहीं होती, किंतु एक प्रकार से घृणा की जो उनका व्यवहार होता है लोगों को सिखाने के लिए, शारीरिक जो आदमी है उनको सिखाने के लिए साधक उस कोटि के साथ करने जैसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे उनको व्यवहार। जैसे वैरागवान पुरुष है उनके चित्त में जो वैराग रहता है तो उनका व्यवहार वैराग जैसा होता है। वहां उस कोटि के जो साधक है उनके हृदय में उपरति रहती है तो उनका व्यवहार भी उपरति वाले पुरुष के जैसा होता है। सहकामी पुरुष जिस प्रकार से आसक्त होकर कर्म करे उनका व्यवहार भी वैसा ही होता है, किंतु अनासक्त होता है। आसक्ति वाला पुरुष जो है व्यवहार करता है उसकी श्रद्धा विशेष होती है, इसलिए वो सुचारू रूप से करता है, वो समझता है कमी रह जाएगी तो फल नहीं मिलेगा। तो फल की इच्छा वाला जैसा व्यवहार करे उसी प्रकार उसका व्यवहार होता है, किंतु फल की इच्छा नहीं होती। उनकी सारी चेष्टा दुनिया को अधिक से अधिक लाभ हो ऐसी होती। उनके व्यवहार के बीच के मां प्रेम जो है, दया जो है, समता है, ये स्वाभाविक ही होती। और मान बड़ाई प्रतिष्ठा को वे मलबूत्र के समान समझते। व्यवहार के बीच के मां और वास्तव के वहां तो उनके जैसा मलमूत्र जैसे चंदन कोई फर्क ही नहीं है। वे पापों का त्याग करते हैं किंतु द्वेष बुद्धि से नहीं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं किंतु राग बुद्धि से नहीं। न जैसी कुशलम कर्म कुशले नाम सज्जते त्यागी सत्वस्तमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न जैसी अकुशलम कर्म है, अकुशल जो अकल्याणकारक जो कर्म है, शास्त्र विपरीत जो कर्म है उसका त्याग तो करता है किंतु द्वेष बुद्धि से नहीं, शास्त्र के अनुकूल जो है उसका व्यवहार होता है किंतु आसक्ति से नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग सदाचार प्रति और जितने जो उत्तम भाव उत्तम आचरण है स्वाभाविक होता है उनसे, पर आसक्ति से नहीं। शास्त्र के अनुकूल या दृढ़ न तो किसी में उसकी आसक्ति होती है न किसी में द्वेष होता है, वे हरक और शोक से परे रहते हैं। विहार के वहां हरक शोक काम में लिया जाता है किंतु वास्तव के वहां हृदय के वहां हरक शोक नहीं होता। स्वांग की जो तुम दिखाओ भी नहीं होता, दिखाओ से भी विलक्षण है और वास्तव से भी विलक्षण। हरक शोक जो है जो वास्तव में सब मनुष्यों को होता है उससे भी विलक्षण, और जो दिखाऊ के मन है उससे भी विलक्षण। दिखाऊ होने से जो दम्भ हो जाता है और वास्तव में वो फंस जाता है। मुक्त होने के कारण से थी ये दोनों से अलौकिक है। पूर्णानं पूर्णानं अपारं शांतानं घनानं अचलानं ध्रुवानं नित्यानं।